दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी प्लान। शाम के 7:30 बजे हैं। इंस्पेक्टर कामत पुलिस चौकी से घर को जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि डेस्क पे रखा लैंडलाइन फोन घनघना उठा। हेलो, राजनगर पुलिस चौकी, इंस्पेक्टर कामत स्पीकिंग। हाँ गोविंद, बोलो क्या बात है? कुछ सुना है से क्या मतलब है तुम्हारा? जरा डिटेल में बताओ।
ज्यादा डिटेल तो नहीं पता सर, बस ऊपर ऊपर से सुना है। यही फॉरेस्ट रेंजर ठेके पे लगता है दो लोग किसी डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं सर। वो किसी जेसी की बात कर रहे थे। हो सकता हो ये जो सब्जी मंडी के पास वाली छोटी सी दुकान है ना, जेसी ज्वेलर, वही हो।
ये मेन मार्केट वाली सब्जी मंडी की बात कर रहे हो तू?
जी सर, लगता है अभी थोड़ी देर में ही लूटने का प्लान है इनका। ये आज रात की बात कर रहे थे।
अच्छा, ये किसी बड़े गिरोह के लोग हैं या ऐसे ही?
सर, ये अपने एरिया के तो लगते नहीं, मैं भी इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। आप एक रेड तो मार ही दो साहब जी, क्या पता कोई नया गैंग हो या किसी दूसरे एरिया के वांटेड हो।
रात के 10:30 बजे जेसी ज्वेलर की दुकान के आसपास चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। दुकान के साइन बोर्ड के ऊपर जलता हुआ बल्ब केवल बोर्ड को ही रोशन कर पा रहा है। आसमान में बादल गरज रहे हैं, मौसम बेहद खराब हो गया है। इंस्पेक्टर कामत कांस्टेबल दयाल और दो सिपाहियों के साथ आधे घंटे पहले से ही मौके पर घात लगाए बैठे हैं।
कामत सर, 10:30 बज गए, अभी तक कोई हलचल नहीं है सर।
शट अप दयाल, कोई आवाज नहीं,
वो दुकान लूटने जरूर आएंगे।
सॉरी सर, वैसे मेरी नजर बराबर दुकान के लॉक पर जमी है।
ठीक 15 मिनट बाद घुप अंधेरे में दो गहरे काले रंग के साये प्रकट होते हैं।
सर, दो आदमी दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं।
दयाल, पोजीशन ले लो।
हैंड्स अप, अगर हथियार निकालने की कोशिश करी तो जान निकाल दूंगा। हिलना मत, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।
अगले दिन सुबह राजनगर पुलिस स्टेशन में।
अजय कुमार, और कितने लोग हैं तेरी गैंग में? कहां का है तू?
सर, कोई गैंग नहीं है सर, मैं और मेरा दोस्त राजू दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा करने का सोचा। इससे पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया है सर। कल नशे में करने निकले और आपने पकड़ लिया। हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है सर, हम तो मजदूर हैं।
हाँ, मासूम बच्चे हो तुम दोनों, जो आम के पेड़ से कैरी तोड़ने निकले थे। गुनाह करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हो तुम दोनों। चल बता, जेसी ज्वेलर ही क्यों चुना तुम दोनों ने?
साहब, कुछ दिनों से हम बहुत परेशान चल रहे थे, पैसों की तंगी चल रही है साहब।
अरे बाप रे, क्या अनोखी परेशानी है। तुम दोनों के अलावा दुनिया में किसी और को तो पैसे की परेशानी है ही नहीं। और हल क्या निकाला कि चलो ज्वेलर की दुकान लूटते हैं। प्लान कैसे बनाया?
साहब, कई दुकानों का मुआयना किया और फिक्स कर दिया कि जेसी को लूटेंगे। ये राजू ने फिक्स किया सर। यकीन करो साहब, ये हम दोनों की पहली चोरी थी जो पूरी नहीं हुई।
अरे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा कि तुमने जौहरी की दुकान लूटने की सोची। चल बता, आइडिया कहां से आया?
हमें रातों रात मालदार बनना था, उस सूरज की तरह।
सूरज की तरह? ये सूरज कौन है? अच्छा, तो जौहरी की दुकान लूटने का आइडिया तुम दोनों को सूरज ने दिया था, या उसे देखकर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया?
जी साहब, देखकर आइडिया आया।
करता क्या है ये सूरज?
पहले तो किराए का ऑटो चलाता था, अब दो दो ऑटो खरीद कर भाड़े पर चढ़ा दिए हैं उसने। बाइक भी नहीं ली है उस सूरज ने। बाइक की साफ सफाई के लिए एक लड़का भी रखा है उसने। हम सोचने लगे इतने पैसे इतनी जल्दी से कहां से आए इसके पास? या तो कोई लॉटरी लगी होगी या कोई दो नंबर का काम किया होगा इसने।
अजय, राजू, दुकान लूटने की कोशिश में तुम दोनों लंबे नपोगे और तुम्हारे इस मोटिवेशनल गुरु सूरज की भी हम स्कैनिंग करेंगे।
दयाल, तुम अभी से सूरज के पीछे लग जाओ। पता तो चले कि एक मामूली ऑटो ड्राइवर रातों रात अमीर कैसे बन गया, जिसे देखकर ये फर्स्ट टाइमर कूद पड़े जुर्म की दुनिया में। ऐसा क्या कांड किया था इस सूरज ने जो पकड़ा नहीं गया? दयाल, इस सूरज की पूरी कुंडली निकालो। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में।
सर, सूरज के घर में तो अचानक लक्ष्मी बहने लगी है। हमारे इलाके में या आसपास के थानों में इस सूरज की कोई हिस्ट्री नहीं है सर। मैंने हर जगह खंगाला, क्राइम रिपोर्ट तो नहीं है इसके खिलाफ, पर काला धन जरूर है सर। ये लो चाय।
रुक रुक रुक, किससे पूछकर तूने ये गले की चेन खरीदे?
तुमने ही तो कहा था पुराने नोट हैं, खर्च करने हैं जैसे भी। फिर वो अपना जोहरी है ना, वो तो मान गया पुराने नोट के लिए।
ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाओगी। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि कितने पैसे हैं हमारे पास।
पर पुराने नोट
वो मैं देख लूंगा, तू ये उतार और रख इसे।
रहने दो ना, शाम को सुनीता की सगाई है, उसके बाद रख दूंगी।
मैंने कहा उतार के रख इसे।
नमस्कार सूरज अन्ना, बैंक खोलने का टाइम हो गया है, बड़ी लंबी लाइन लगी है।
ये ले गणेश, ये तेरा, और ये तेरा धनुष। जाओ बैंक जाओ और बदल कर ले आओ इन्हें।
सूरज अन्ना, मेरे 2 रिश्तेदार हैं, वो भी पैसे बदली करने को तैयार हैं, सिर्फ 50 रुपए लेंगे।
अरे जा रे धनुष, मेरे पास 25-25 रुपए में नोट बदली करने को लोग मर रहे हैं। चल जा, पहले ये बदल कर ला, फिर सोचते हैं। ए ए, ए सूरज अन्ना, ए सूरज अन्ना, मुझे भी नोट बदली करने के लिए दो ना मुझे सूरज अन्ना। लोकेश, ये अपनी मनहूस शकल रोज दिखाने आने की जरूरत नहीं है।
साले लोकेश, मैं क्या अभी पैदा हुआ हूँ? भड़ास निकाल रहा है ना मुझ पर? मैं नोट दूं और तू उसे बदलकर लौटाने की बजाय वहां से हवा हो जाए?
वाह सूरज अन्ना वाह, इतना ही भरोसा है आपको मेरे ऊपर? अगर मैं आपके पैसे लेकर भाग सकता हूँ तो क्या आपके बारे में दुनिया में बवाल नहीं कर सकता?
बेवड़े, धमकी दे रहा है तू मुझे?
चोंच डुबाने के पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी हालत तो देखो अन्ना।
तो सुधार अपनी हालत, ये दारू वारू बंद कर और कुछ काम वाम पकड़ ले। जो तेरे हिस्से का था वो सब तो पी गया, अब क्या मेरा खून पिएगा?
चल भाग यहां से, चेहरा मत दिखाना कभी अपना मनहूस कहीं का, चल फूट।
अरे इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं, सबके सब मतलबी हैं साले। ए सूरज, तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ, साले देख लूंगा तुझे, जैसी करनी वैसी भरनी, याद रखना।
सर, जिस हिसाब से सूरज नोट बदल रहा है, लगता है काला धन मजबूत है। एक शराबी है सर, लोकेश नाम है, पहले वो भी ऑटो चलाता था, अब जब नशे में नहीं होता तो मैकेनिक का काम करता है। एक टाइम में वो सूरज का खास था, पर अब उसे गालियां देता है।
तो दयाल, लोकेश के हलक में हाथ डालो, इसके पेट में जरूर कुछ होगा।
सर, उसकी जुबान पर है, हर दिन लड़ता है सूरज से, भरोसे का वास्ता देता है उसे, कहता है मेरी जुबान नहीं खुलेगी सूरज।
तो दयाल, लोकेश की जुबान की ऑयलिंग करवा दो।
वैसे सर, वो फॉरेस्ट रेंजर वाले ठेके पर ही पड़ा होता है।
तो दयाल, उसके साथ बैठो और उसे इतना पिलाओ कि वो सब कुछ उगल दे।
कामत सर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो उधर पुलिस वाला करके सब मुझे जानते हैं, कहीं अलर्ट ना हो जाए लोकेश।
शाम को 7 बजे फॉरेस्ट रेंजर ठेके पर।
ए क्या रे, ये क्या सूरज की तरह चिंदीगिरी कर रहा है तुम लोग, बोला ना तेरे को कल पैसे लाकर दे देगा बाबा। सॉरी लोकेश अन्ना, राकेश अन्ना बोले पहले रोकड़ा फिर बेवड़ा। साले तुझे यहाँ जितने दिन हुए है ना तब से मैं शराब पी रहा हूँ। वो सब ठीक है अन्ना, लेकिन आप पहले एक बोतल पी चुके हो और कल भी ऐसे ही एक खंभा खाली किया लेकिन बिल नहीं दिया, तो भाग गया मैं, भाग गया, लौट कर नहीं आया मैं। आप बहस मत करो अन्ना, पैसे दो तब बोतल आएगी वरना नहीं आएगी। हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को बोतल नहीं मिलती तो किसी को दर्द सुनने वाला नहीं मिलता। अबे क्या दर्द है तेरा, चल अपुन सुनेगा और तेरा बोतल भी पिएगा, चल बता। साला कड़की ने तो अपनी जान ले ली है, पैसा होने के बाद भी कंगला, पुराने नोट बदलना ऐसे हो गया है जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो गया हो। पता है 4,000 के बदले अब बस 2,000 के नोट बदल सकते हैं।
पुराना तो पुराना सही, लेकिन तेरे पास 2-4 हजार रुपए तो है बदलने के लिए? इधर तो ना नया ना पुराना, साला एक पैसा नहीं जेब में, बहुत चीटिंग हुआ है मेरे साथ। भाई लोकेश, पूरी दुनिया चीटर है साली, जहां मजबूर आदमी दिखा सारे चीटर मिलकर टूट पड़ेंगे। तू भी तो कुछ बता रहा था ना, क्या किसी ने तेरे पैसे नहीं दिए? क्या नाम ले रहा था तू, सूरज? सूरज ऐसा ही कुछ बोल रहा था। बहुत गंदा गेम खेला मेरे साथ सूरज ने।
क्यों खेला?
क्योंकि तुम मजबूर थे भाई। अरे नहीं यार, मैं मजबूर नहीं था, मैं बेचारा था। मेरे भोलेपन का, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया उसने, कीड़े पड़े साले को। बहुत बड़ा हाथ मारा था हम लोगों ने, सारा का सारा आइडिया मेरा था। और मालूम है माल मिलने के बाद वो सूरज क्या बोला मेरे को?
क्या बोला?
लोकेश क्या किया है तुमने, तू तो 12वां खिलाड़ी था, तू तो गाड़ी का स्टेपनी था।
ऐसा बोला? ऐसा ही बोला साला।
मुझे एक एक बात याद है उस दिन की।
ये क्या है सूरज, तेरा हिस्सा पूरे 10,000।
लेकिन बात तो हुई थी कि लाखों मिलेगा। अबे जो एक्चुअल रिस्क उठाएगा, शेर के मुंह में हाथ डालेगा, उसी को लाखों मिलेंगे ना। तूने क्या किया, साइड से थोड़ी सी हवा दी? तेरी भाषा में बोलू ना तो तू गाड़ी का स्टेपनी था, 12वां खिलाड़ी।
लेकिन सूरज पूरा आइडिया मेरा था, अगर मैं सोचता नहीं तो ये काम होता ही नहीं।
अब दिमाग का दही बड़ा मत कर लोकेश, जितना दे रहा हूं ना खुशी से ले ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा।
तो लाख रुपए की बात करके वो सिर्फ 10,000 के चिल्लर फेंके तुझ पर? मैं साला सूरज से लड़ा पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि पूरा का पूरा आइडिया मेरा था।
दुनिया बहुत हरामी होती है लोकेश भाई, समझती नहीं है। अब किसी भी कांड में मेन तो ये आइडिया ही होता है। वैसे क्या था ये आइडिया? अरे बोल ना, तुझे क्या लगता है, तेरा ये आइडिया मैं चुरा लूंगा? अरे बिना जान पहचान के तुझे कितनी दारू पिलाई, अब तू मुझे ही आइडिया नहीं बताएगा? देख यार, तू अब चीटिंग कर रहा है मेरे साथ।
यार मैं चीटिंग नहीं करता, लोकेश को दुनिया चीट करती है।
मैं बहुत भरोसे वाला आदमी हूँ भाई, तो मैं क्या कम भरोसे वाला हूँ? ट्रेन होती है ना, ट्रेन,
हाँ छुक छुक गाड़ी वाली ट्रेन, ट्रेन जो पूरी दुनिया को यहाँ से वहाँ ले जाती है, पर कभी कभी जरूरत पड़े तो दुनिया से उठा कर भी ले जाती है।
क्या क्या मतलब?
मतलब कि अगर कोई ट्रेन से गिरेगा तो मरेगा, एक्सीडेंट।
हाँ कोई इतनी तेज ट्रेन से गिरेगा तो बचेगा थोड़े ही,
इसमें आइडिया क्या? यही तो आइडिया था मेरे भाई, ट्रेल से गिरेगा तो मरेगा, इसमें आइडिया क्या है? सेम टू सेम, रवि और सूरज दोनों ने यही बोला था, तो आइडिया क्या है इसमें?
देख भाई, गाड़ी के नीचे कुचलेंगे, ब्रिज से गिरा के डुबोएंगे या मार कर कहीं जंगल में जला देंगे, तब भी पुलिस हम तक कभी न कभी पहुंच ही जाएगी। कोई और तरीका अपनाएंगे तो भी पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी, है न रवि?
खेल तो इसमें है कि किसी भी एंगल से ना लगे कि मर्डर हुआ था, सबको लगे कि श्रीधर का एक्सीडेंट हुआ था।
देखो, जो भी करेंगे एक टाइम ही मौका मिलेगा, चांस बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, और अगर सब कुछ सही रहा ना तो लाखों मिलेंगे लाखों। कुछ और सोचते हैं, तुम लोग भी सोचो।
ए सूरज भाई, मेरे पास एक आइडिया है इस श्रीधर को टपकाने का।
वाह लोकेश, अब तेरे पास भी आइडिया है, चल बोल।
ट्रेन, मेरा आइडिया है ट्रेन, ट्रेन से गिरा देते हैं।
अबे ढक्कन, ट्रेन से गिरा देंगे तो क्या सिर्फ एक्सीडेंट माना जाएगा? पुलिस तहकीकात तो करेगी ना?
पुलिस एक्सीडेंट की तहकीकात करेगी मेरे भाई, मर्डर की तहकीकात क्यों करेगी? जैसे ट्रेन ट्रेन होती है, वैसे ही एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, और ऐसा तो अक्सर होता है कि लोग ट्रेन से गिर जाते हैं तो पुलिस एक्सीडेंट समझकर फाइल बंद कर देती है।
हाँ, मैंने मुंह नहीं खोला कभी आज से पहले, और उन्होंने मेरे हिस्से देने की बजाय क्या किया, 10,000 रुपए की भीख दी भीख। मुझे तो यार लाखों मिलने चाहिए थे, जैसी करनी वैसी भरनी, लाखों रुपए मिले थे इनको कैश में। फिर वो नोटबंदी हो गई ना, अभी सालों की बैंड बज गई। मैंने भगवान से दुआ की थी कि रवि कांत तो सूरज की लग जाए, और दुआ का असर तो देखो भाई, 8 तारीख को दोनों का काम तबाह।
अच्छा लोकेश, ये श्रीधर जो तेरे आइडिया की वजह से एक्सीडेंट में मारा गया था, था कौन?
ए यही गाजियाबाद का लड़का था।
कहाँ गिराया इसे?
यही चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन है ना, उसके थोड़ा आगे।
कब की बात है ये?
1 साल से ऊपर हो गया भाई, अब तो पुलिस भी फाइल बंद कर चुकी है, इसीलिए तो मेरा जी जलता है। क्या आइडिया था, परफेक्ट।
अगले दिन लाल कुआ पुलिस स्टेशन में।
जी हाँ सर, ये केस मैंने ही हैंडल किया था। श्रीधर रंगा जवान लड़का था, मौत के वक्त शराब पिए हुए था,
और आपने इसे एक्सीडेंट समझकर ये केस क्लोज कर दिया?
क्योंकि कामत सर, कोई कॉन्स्पिरेसी या मर्डर का एंगल नहीं मिल रहा था। काफी गरीब घर से था ये लड़का श्रीधर रंगा, उसकी जेब से हमें उसका आधार कार्ड मिला। 174 सीआरपीसी के तहत एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया, कुछ लोगों से पूछताछ भी की, पर कुछ नहीं मिला, मजबूरन हमें इस केस को बंद करना पड़ा।
वैसे सर, अचानक 1 साल बाद कौन सा नया एंगल मिल गया आपको?
दरअसल हमें एक लीड मिली है जिससे ये पता चला है कि श्रीधर रंगा की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था।
मर्डर?
दरअसल सर, श्रीधर रंगा की बहन गीता मोहन और उसके पति आनंद मोहन ने भी यही कहा था कि श्रीधर कभी शराब नहीं पीता था, और वो तो उस दिन वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहा था।
वैसे सर, मैं आपको श्रीधर की बहन का पता आपको SMS करता हूँ।
जय हिंद सर।
दयाल, ये आइडिया मास्टर लोकेश की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। 1 साल पहले चिपियाना बुजुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक श्रीधर रंगा नाम के आदमी की लाश मिली, और चिपियाना रेलवे पुलिस ने उसे एक्सीडेंटल मानकर केस क्लोज किया था।
सर, ये रवि कांत पुराना पापी है, 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर में जेल जा चुका है, 1 कांस्टेबल फील्डिंग पर लगा रखा है सर।
दयाल, श्रीधर रंगा केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह रहा था
कि श्रीधर गरीब लड़का था, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी गरीब फैमिली से होंगे। फिर श्रीधर को मारकर ये सूरज और रविकांत ने लाखों रुपए कमाए कैसे? दयाल, एक बार श्रीधर रंगा की बहन गीता मोहन और जीजा आनंद मोहन से मिलते हैं। आखिर ये माजरा है क्या? इंस्पेक्टर कामत कांस्टेबल दयाल के साथ गीता और आनंद के घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आनंद ने अपनी रिपेयरिंग की दुकान बंद कर दी है और गीता के साथ 6 महीने पहले ही विक्रम इनक्लेव की एक कोठी में शिफ्ट हो गया है। दयाल, कुछ सीरियस झोल तो है। श्रीधर रंगा की मौत होती है और तुरंत सभी लोग लखपति बनते हैं, उसके हत्यारे रिश्तेदार और बहन बहनोई सभी। श्रीधर रंगा की बहन और जीजा ने कोठी खरीदी, सूरज ऑटो ड्राइवर ने 2 नई ऑटो और 1 बाइक खरीदी, उसकी पत्नी गहने खरीद रही है। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री सीटर रविकांत भी ऐश कर रहा है। दयाल, बस एक लोकेश है जो गरीब का गरीब है और अब हम जानते हैं क्यों। दयाल, अब वक्त आ गया है, अब इस सूरज और रविकांत दोनों को थाने बुलाकर थोड़ी सेवा पानी की जाए। अभी श्रीधर रंगा की बहन और बहनोई से हम पूछताछ कर लेते हैं, फिर सूरज और रविकांत को देखते हैं।
साहब, ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। मैंने पुलिस को बार बार बोला था साहब कि मेरा भाई कभी शराब नहीं पीता था और उस दिन तो वो मंदिर जा रहा था साहब। बात कुछ और ही थी।
बात कुछ और थी जरूर, पर आप लोगों ने पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की, कुछ खास जोर भी नहीं दिया। क्यों?
पहले आप बताइए ना सर, क्या पता चला है आप लोगों को?
काफी कुछ पता चला है और काफी कुछ पता चलना बाकी है। जैसे कि एक बात पता चली है कि श्रीधर को मारने वाले रातों रात लखपति बन गए, जैसे आप लोग बन गए। श्रीधर के मरने के बाद कहां ये बड़ी कोठी, कहां वो छोटा सा 1 कमरे का मकान। आनंद, तुम्हारी तो अब खुद की फर्नीचर का शोरूम है, 6 महीने में इतनी तरक्की कैसे?
वो हम लोग पैसे बचा रहे थे पहले से सर, सब सही जगह पर इन्वेस्ट किया था बस।
अच्छा, तो मर्डर में कितना इन्वेस्ट किया था आनंद?
क्या कह रहे हैं ये आप साहब?
यही कि तुम्हारे साले श्रीधर रंगा के मर्डर पर तुमने कितना इन्वेस्ट किया था, जिसके चलते बतौर रिटर्न मरवाने वाले और मारने वाले लखपति बन गए, शायद करोड़पति बन गए। 1 सप्ताह बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में दयाल, ऊपर से लेकर नीचे तक ये केस एक क्लासिक केस है इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही का। ये मर्डर कभी डिटेक्ट ही नहीं होता, श्रीधर के मुजरिम कभी पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर ही इसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर थी कि कभी रूट लेवल पर जाने की कोशिश ही नहीं हुई।
कामत सर, सभी ने इस मर्डर से पैसे बनाए, पर एक गरीब लड़के के मर्डर से लाखों रुपए कहां से मिले सर?
दयाल, ये केस कभी गरीब लड़के के मर्डर वाला था ही नहीं, बल्कि इस केस में एक बीमार आदमी की घटती जिंदगी को बड़ी बेदर्दी से निशाना बनाया गया। इसकी तैयारी 3 साल पहले 2013 में ही शुरू हो गई थी।
क्या मतलब है रवि? मैं समझा नहीं।
यार आनंद, ये जो तेरा साला है ना, काम कम कर पाता है, बहुत स्लो है।
यार रवि, इसकी हालत बहुत खराब है। श्रीधर गीता के मामा का लड़का है। इसके माँ बाप के मर जाने के बाद गीता इसे अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा है यार, दुख होता है इसे देखकर।
क्यों, क्या हुआ इसे?
HIV पॉजिटिव है यार।
कब से?
पैदाइशी है। पहले इसके फादर को था, फिर माँ को, पर सैड स्टोरी है बेचारे की।
अब कैसा है ये?
ट्रीटमेंट चल रहा है भाई, यही सिविल अस्पताल में। ज्यादा टाइम नहीं है इसके पास, बोल रहे हैं मैक्सिमम 1.5-2 साल, और इसलिए हम भी इसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। नसीब ही खराब है।
देख भैया,
नसीब का तो ऐसा है ना कि खुद हम अपना खराब नसीब को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए दिल पर पत्थर और दिमाग पर जोर देना पड़ता है।
देख आनंद, सुनने में तुझे बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ अच्छा करो तो उसका फायदा भी मिलना चाहिए। तूने अपनी बीबी के मुंह बोले भाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये खुद तुझे कुछ रिटर्न तो दे नहीं सकता। कम से कम इसके जाने के बाद तेरा कुछ फायदा तो होना चाहिए ना।
क्या बोल रहा है रवि तू?
देख आनंद, हम श्रीधर की पॉलिसी निकलवाएंगे, एक मोटी पॉलिसी।
लेकिन यार श्रीधर HIV पॉजिटिव है, ये बात कैसे छिपाएंगे हम?
अरे यार छुपा कहां रहे हैं, सिर्फ हम इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को बता नहीं रहे हैं।
आनंद तू इतना मत सोच बे, बस जा और पॉलिसी पेपर पर श्रीधर का सिग्नेचर ले ले बस।
यार रवि, 1.25 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ज्यादा नहीं है क्या?
यार इतने बड़े पॉलिसी के प्रीमियम भी तो काफी बड़ी होगी, कहां से भरूंगा मैं ये सब?
सब इंतजाम हो जाएगा आनंद, तुम ज्यादा फिक्र मत करो।
दयाल, इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ने जो 1.25 करोड़ के क्लेम को पास किया है और 1.25 करोड़ का चेक जो गीता मोहन को सौंपा है, वो दरअसल श्रीधर रंगरेज का था, न कि श्रीधर रंगा का। क्लेम के लिए भरे गए फॉर्म से लेकर सबमिट किए गए हर डॉक्यूमेंट, यहां तक कि आधार कार्ड तक नकली हैं। हर डॉक्यूमेंट में बहुत ही सफाई से श्रीधर रंगरेज की जगह श्रीधर रंगा किया गया। दयाल, मैं 100% कंफर्म हूं कि इस फ्रॉड में इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी इन्वॉल्व होंगे।
इंश्योरेंस कंपनी में फ्रॉड हुआ नहीं है, बल्कि लापरवाही की वजह से होने दिया गया।
देर शाम राजनगर पुलिस स्टेशन में।
तो ये फोर्जरी क्यों की थी?
ताकि इंश्योरेंस कंपनी कभी श्रीधर का असली बैकग्राउंड पता ना कर सके, है ना?
सर ये सब रवि ने किया है, सारा आइडिया उसी का है सर।
यार आनंद, तू कब से HIV पॉजिटिव का राग सुना रहा है?
अरे HIV पॉजिटिव श्रीधर रंगा है, श्रीधर रंगरेज नहीं है, इस बात को तुम समझ लो।
लेकिन यार इंश्योरेंस कंपनी बैकग्राउंड की डिटेल स्टडी करती है ना?
100% करती है यार, इस केस में नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों को केवल मोटे प्रीमियम से मतलब होता है और कुछ नहीं। और वैसे भी ये जो सारे पेपर बने हैं वो सब श्रीधर रंगरेज के नाम से बने हैं, जो ऑन पेपर HIV से पूरी तरह से मुक्त है।
पर आनंद, तुमने ही बोला था कि डॉक्टर ने बताया है श्रीधर 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। अब श्रीधर ज्यादा जी रहा है तो मैं क्या करूं यार? HIV की नई नई दवाइयां पेशेंट की जिंदगियां बढ़ा रही हैं, और रवि मैं तो मर रहा हूं ना मोटी मोटी प्रीमियम भर के।
लगता है अगले प्रीमियम के लिए घर दुकान सब बेचना पड़ेगा, पैसे तो है नहीं मेरे पास।
देख आनंद, इतना बड़ा पॉलिसी लेने का एक ही मकसद था कि श्रीधर को 1-1.5 साल में मुक्ति और हम सबको प्रसाद।
उल्टा डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में श्रीधर की हालत में काफी सुधार हुआ है। अब बता मैं करूं तो क्या करूं? श्रीधर को जान से मार दूं?
देख आनंद, अगर श्रीधर नहीं मरा तो इतना तो तय है कि प्रीमियम भरते भरते तू जरूर मर जाएगा, और ये 100% सच है। इससे बेहतर है कि ये मर जाए।
श्रीधर शराब को हाथ तक नहीं लगाता था साहब, उस दिन उसका शराब पीना जरूरी था, वरना पता कैसे चलता कि पी के गिर गया है? तभी तो रूटीन एक्सीडेंट लगता। प्लान के मुताबिक आनंद श्रीधर के साथ ट्रेन में सवार हो गया और उसी कंपार्टमेंट में चढ़ा जिसमें पहले से रविकांत और लोकेश और सूरज मौजूद थे। ट्रेन गाजियाबाद से खुलने के बाद रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन क्रॉस करते ही,
अरे रवि अन्ना, आप भी इसी ट्रेन में हो?
अरे श्रीधर, वाह अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो श्रीधर?
रवि अन्ना, जीजू मुझे वैष्णो देवी ले जा रहे हैं,
वहां माथा टेकने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। चल श्रीधर, गेट पर थोड़ी हवा खाते हैं, ठीक है ना? चलो, वैसे भी सर भारी हो रहा है।
चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर मौका देखकर रवि ने श्रीधर को धक्का दे दिया। सुबह के 11:30 बजे SSP ऑफिस गाजियाबाद।
सर, रेलवे पुलिस से लापरवाही हुई, लेकिन सच कहें तो रेलवे पुलिस ने कभी सोचा तक नहीं था कि इस एक्सीडेंट के पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग होगी।
श्रीधर रंगरेज के इंश्योरेंस क्लेम के लिए लगाए गए सारे डॉक्यूमेंट जाली थे। इसके अलावा श्रीधर रंगा को श्रीधर रंगरेज बना के मार डाला गया।
इंस्पेक्टर कामत, अब क्रिमिनल बहुत शातिर हो गए हैं, हमसे भी 4 कदम आगे चलते हैं। हमें उनसे भी 2 कदम आगे चलकर उन्हें पकड़ना होगा। खैर, देर से आए दुरुस्त आए, केस सॉल्व हो गया और सारे मुजरिम पकड़े गए। पर याद रहे, आइंदा ऐसी गलती ना होने पाए।
देर शाम राजनगर पुलिस स्टेशन में।
दयाल, एक चोरी की छोटी सी टिप ऑफ ने इतने बड़े केस को क्रैक करवाया। एक ऐसा केस जो 1 साल पहले एक्सीडेंट करार देकर क्लोज कर दिया गया था और इंश्योरेंस क्लेम के पैसे हैंडओवर हो चुके थे, एक छोटी सी खबर ने एक परफेक्ट क्राइम को होते होते रोक दिया।
अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी प्लान। यह कहानी हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।